ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತ ಯಥಾರು ಶ್ಲೋಕ ಕ್ರಮಾಂಕ ಅಧ್ಯಾಯ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಶ್ಲೋಕ ಕ್ರಮಾಂಕ 15. ಏವಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಪೂರ್ವೈರಪಿ ಮುಮುಕ್ಷುಭಿಃ ಕುರು ಕರ್ಮೈವ ತಸ್ಮಾತ್ವಂ ಪೂರ್ವೈಃ ಪೂರ್ವತರಂ ಕೃತಂ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ ಮೇ ಸಮಸ್ತ ಮುಕ್ತಾತ್ಮಾವು ನೇ ಮೇರಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೋ ಜಾನ್ ಕರ್ಕೆ ಹೀ ಕರ್ಮ ಕಿಯಾ. अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो. एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो पिछले श्लोकों से हमको आ रही है. जब व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को समझेगा तो भगवद्गीता से और अर्थ शास्त्रों से तो अपने दिव्य स्वभाव के बारे में भी समझेगा कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, और भगवान से अपने संबंध के बारे में समझेगा. तो भगवान की दिव्य प्रकृति का मतलब समझने का अर्थ है कि हम अपनी दिव्य प्रकृति को भी समझेंगे, और जब भगवान की दिव्य प्रकृति को समझेंगे तो फिर भगवान के ही संबंध में कार्य करने की प्रवृत्ति हो जाएगी. व्यक्ति केवल भगवान के संबंध में कार्य करेगा. जैसे हम जब समझेंगे कि हम इस जगत के हैं ही नहीं तो इस जगत के लिए कार्य करने की क्या आवश्यकता रहेगी. लेकिन थोड़ा सा समझना चाहिए, जगत में रहते हुए इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करने की इच्छा नहीं रहेगी. जगत में रहते हुए कृष्ण के लिए कार्य करने की स्प्रिया रहती है एक मुक्त आत्मा की. जैसे यहाँ पे बोलते हैं मुमुक्षु भी की, जो मुक्त होना चाहता है, लेकिन भगवान के लिए कार्य करने की स्प्रिया हमेशा बनी रहती है, और भगवान के लिए कार्य करने की स्प्रिया भगवत प्रेम कहलाती है. तो ये भगवान की दिव्य प्रकृति को जानना भगवद्गीता से बहुत आवश्यक है. और ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई व्यक्ति भगवान की सो कॉल्ड भक्ति कर रहा है और वो सोचे कि मैं अल्टीमेटली भगवान निराकार हैं और भगवान इस समय सत्वगुण को स्वीकार करके कृष्ण रूप में आ रहे हैं, तो इस प्रकार का भक्त को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है. तो ये समझ में आना चाहिए कि भगवान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान का धाम सब कुछ शाश्वत है. ये सिद्धांत समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम उनके शाश्वत दास हैं. ये स्थिति कभी परिवर्तित नहीं होगी, और अभी भी मैं कृष्ण का दास हूँ. और मुक्त होना वस्तुतः बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम जैसे ही कृष्ण की सेवा में लगते हैं तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों से हम अलग हो जाते हैं, भले ही ऐसे लगे कि हम उसी भौतिक प्रकृति के वातावरण में कार्य कर रहे हैं. तो ये बहुत बड़ा रहस्य है. तात्पर्य, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं. कुछ के मन में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं. कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है. जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें. थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. हम सभी के मन में भोग की वासना, काम वासना रहती है, जगत को भोगने की वासना, भगवान से अलग. तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैदिक भक्ति का पालन करके, अनुष्ठान विधि का पालन करके व्यक्ति कृष्ण भावनामृत कहते हैं कि भाई सुबह मंगल आरती के लिए उठो, भगवान का नाम जप करो, इतनी माला, भगवद गीता को पढ़ो. तो हो सकता है प्राय शुरुआत में अच्छा ना लगे, जैसे पीलिया के रोगी को शुरुआत में मीठी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन यही भक्ति, यही जो भक्ति का प्रोसेस है, तरीका है, इसके द्वारा व्यक्ति शुद्ध हो जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं शुद्ध हो जाऊंगा तब शुद्ध भक्ति करूंगा या भक्ति करूंगा, ना. भक्ति हम दोनों ही प्रकार के लोग करते हैं. जिनका हृदय शुद्ध नहीं है वो करेंगे तो उनका हृदय शुद्ध होगा, यानी साधन की तरह, और जिनका हृदय शुद्ध हो जाता है भक्ति उनके लिए अमृत जैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. तो उन लोगों को भी भक्ति की क्रिया करती रहनी चाहिए, ताकि जो नए लोग हैं जिनके हृदय शुद्ध नहीं है वो उनके उदाहरण से सीखें कि भाई ये जब इतने सीनियर भक्त या इतने श्रेष्ठ व्यक्ति कर रहे हैं तो मेरे को भी करना चाहिए. लेकिन उद्देश्य हमें देखना चाहिए कि दोनों का उद्देश्य बहुत अंतर है. एक अशुद्ध व्यक्ति के लिए भक्ति साधन की तरह है, और एक शुद्ध भक्त के लिए वो साध्य है, वो अमृत है, वही उसका जीवन हो जाता है. ठीक है. मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं. किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्य से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वे भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। बहुत सुंदर पटपट है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन से और हम सबको कह रहे हैं, अर्जुन क्षत्रिय थे तो उन्हें युद्ध करना था, लेकिन वो युद्ध भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए था। तो ऐसे ही जगत में व्यक्ति अपने कार्य को करे, लेकिन उन्हीं कार्यों को करे जिससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हो, या फिर उन कार्यों को इसलिए करे ताकि कृष्ण की सेवा हो। जैसे भगवान ने भगवद्गीता में बोला है कि जो इस ज्ञान को, भगवद्गीता के रहस्य को दूसरों को देता है वो सेवक उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। अब इससे अधिक भगवान खोल के क्या बोलेंगे। और साथ साथ भगवान ये भी बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से पराभक्ति प्राप्त होगी और निश्चित रूप से वो भगवान के धाम जाएगा। तो अब हम सब लोगों को अपने जीवन को प्रयास करना चाहिए, इस तरह से हम ढालें कि हम भगवान की वाणी का प्रचार अनेक अनेक लोगों के पास कर सकें, और जो भी हमारे सो कॉल्ड भौतिक कार्य हैं उनको, मैं सो कॉल्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भौतिक रहने जाते तो भौतिक कार्य हैं, उनको हमें अलाइन करना चाहिए, उनको लाइन पे लाना चाहिए ताकि हम कृष्ण भावना का प्रचार जीवात्माओं तक कर सकें। देखिए, जब तक लोग भगवान के बारे में प्रमाणिक रूप से सुनते नहीं हैं तब तक वो भगवान के प्रति उनकी भाव प्रेम भाव जगता नहीं है, वो जागृत नहीं होते, कृष्ण की सेवा नहीं करते। और जैसे वो कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण के स्वभाव को समझेंगे तो वो मुक्त हो जाएंगे। तो हम भक्तों के पास जो श्रीला प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से ये हमको बहुत विशिष्ट ज्ञान मिला है जिसमें मेरा कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम प्रयास करके इस भगवद्गीता के ज्ञान को समझते हैं और जो इच्छुक हों लेने के लिए उनको देने का प्रयास करते हैं तो कितना लाभ हो सकता है। जैसे जिस लेक्चर को जो लोग भी सुन रहे हैं ये सुनेंगे, अगर वो सब लोग प्रयास करें कि एक व्यक्ति को मैं भगवद्गीता के बारे में बताने का प्रयास करूंगा तो कितने लोगों को हम प्रचार कर सकते हैं। एक व्यक्ति को भी आप बोलिए कि आप हरे कृष्ण मंत्र जप करिए, भगवद्गीता पढ़िए, भगवान को भोग लगाइए, तो बहुत बड़ी कृपा है उस जीवात्मा के प्रति, क्योंकि थोड़ा सा भी जीव अगर भगवान के प्रति सम्मुख हो जाता है, उनकी तरफ मुड़ जाता है, फिर भगवान उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं, नहीं तो वो जीवात्मा दुख भोगता रहेगा। इस संबंध में बहुत ही विनोदपूर्ण उदाहरण आज हम सुबह क्लास में सुन रहे थे, बहुत विनोदपूर्ण, कि जब कभी बॉक्सिंग मैच होता है तो दो प्रकार के उसमें पहलवान होते हैं, तो एक पहलवान बहुत शक्तिशाली होता है और एक पहलवान उतना शक्तिशाली नहीं होता, तो वो जो छोटा पहलवान है उसको बार बार बाउट्स बोलते हैं, बाउट का मतलब होता है एक कुछ दो चार पांच मिनट के लिए युद्ध होता है, बॉक्सिंग होती है, और फिर उसके बाद वो बीच में गैप आता है, फिर उसके बाद उसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, बर्फ लगा देते हैं, थोड़ा ठीक ठाक करके फिर उसको भेज देते हैं, तो कितनी बार वो रिंग में गया है उतनी बार उसको पैसा, उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। तो अब भौतिक जगत में माया कितनी प्रबल है, दुख देने के लिए बहुत शक्तिशाली है। तो अगर व्यक्ति को इस प्रकार से कार्य में लगाया जाए कि वो बार बार इस जगत में आए, बार बार आकर के दुख भोगे, पिटे, तो क्या ये बुद्धिमानी है। आप समझ रहे होंगे मेरे उदाहरण कि जो बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग वाला उदाहरण में जो छोटा पहलवान है वो उसकी पिटाई हुई खूब जम के, उसको मतलब परिदा बना दिया गया, ऐसे कहना चाहिए, पीट पीट के, उसके बाद उसको 2 मिनट का ब्रेक दिया गया, थोड़ा सा उसको कुछ बर्फ लगाई गई, उसके बाद फिर भेज दिया गया पिटने के लिए, तो क्या ये बुद्धिमानी है। ऐसे ही हम लोग बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, एक जन्म में दुख भोगते हैं, पूरा मरीदा बन जाता है, कष्ट भोगते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा ठीक ठाक करके फिर दूसरा शरीर मिल जाए, फिर और इसी के और साथ साथ इस जगत में भी इस समय भी दुख भोगते हुए हम व्यक्ति को प्रेरित करें कि नहीं ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा, आगे जाके ठीक हो जाएगा, अभी तो तुम बहुत दुख भोग रहे हो, कोई बात नहीं, भौतिक कार्य करते रहो, आगे जाके तुम सुखी हो जाएगी, सुख मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। बुद्धिमानी तो ये है कि व्यक्ति कहे कि तुम भाई इस युद्ध करना छोड़ो, संघर्ष को करना छोड़ो, कि ऐसे लाभ क्या मिल रहा है तुमको। तो वैसे ही भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि तुम इस जगत की में संघर्ष क्यों कर रहे हो, तुम मेरी शरण में आओ। इसको शरण भगवान की कृष्ण की शरण लेता है तो व्यक्ति तापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर हम इन तापों से मुक्त ना होना चाहें और बार बार इस बॉक्सिंग रिंग में आए, माया से प्राप्त से युद्ध करना चाहें, तो क्या किया जा सकता है? तो लोगों को जब हम भगवदगीता के बारे में बताते हैं तो फिर व्यक्ति धीरे धीरे ये युद्ध करना छोड़ देता है, भोग करने की बात छोड़ देता है। फिर वही श्लोक याद रखिए कि काम की इच्छा, काम जो भौतिक इच्छाओं से प्रेरित कर्म है, उसके द्वारा ही हमको दुख आता है। तो इस युद्ध में, इस बॉक्सिंग रिंग में निकलने का प्रयास करें हम। भगवान अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाएं तो हम कर्म बंधन से भी मुक्त होंगे और इस जीवन में बहुत सुखी होंगे। और इसके लिए अपने को, व्यक्ति को अपनी स्थिति को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो भी उसकी स्थिति है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, संन्यास, उसमें रह सकता है। लेकिन अब अधिक अधिक प्रयास ये करना चाहिए कि भोग के लिए अपने प्रयास ना करके कृष्ण के इस उद्देश्य से के लिए, कि जो उद्देश्य है हरि भक्ति का प्रचार, उसके लिए मैं अधिक से अधिक समय निकाल सकूं और अपनी शक्ति को बढ़ा सकूं, सीख सकूं कैसे कृष्ण भक्ति का मैं प्रचार कर सकता हूं, दूसरों की मदद कर सकता हूं। तो इसके द्वारा हम कर्म बंधन से तो मुक्त होंगे ही, साथ ही साथ भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद हम पर होगा और भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा।